भजन संहिता आठ, आठवां भजन प्रधान वादक के लिए गीतीत का राग है। गीतीत का अर्थ दाख रौंदना है और इससे आपको कटनी के समय की याद आएगी, जो वास्तव में न्याय का सूचक है। कटनी का समय आ गया है। भजन संहिता आठ पद एक। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। पहला शब्द प्रभु, लॉर्ड, सब बड़े अक्षरों में लिखा है, जो ये दर्शाता है कि ये इब्रानी भाषा में यहोवा शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। यहोवा को हम सही तरह से उच्चारित करना नहीं जानते, शायद इसका उच्चारण यहोवा है, कोई भी नहीं जानता। लोगों ने इस विषय पर किनारा कर लिया है, लेकिन यह प्रश्न स्थिर है कि हम वास्तव में इसके उच्चारण के प्रति निश्चित नहीं है। यहूदी इस नाम को इतना पवित्र मानते थे कि वे इसको कभी लिखते नहीं थे, वे मात्र YHVH अक्षरों को लिखते थे, इसलिए इसका उच्चारण नहीं किया जा सके। वे पढ़ते समय भी इसका उच्चारण करना नहीं चाहते थे, इसलिए जब कोई यहूदी ऐसे पद पर पहुंचता था, तब वो हे प्रभु मेरे प्रभु इब्रानी में बोलता और कहता ओह, फिर वो सिर झुकाता, तब कहता नाम, परंतु उस नाम का उच्चारण नहीं करता था, क्योंकि वो परमेश्वर का नाम था। ये इब्रानी की क्रिया है, जिसका अर्थ है मैं हूं सो हूं, या ज्यादा शाब्दिक तौर पर जो केवल एक ही है। ये ऐसा नाम है जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे अपना संबंध दर्शाता है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपकी आवश्यकताएं ही बन जाए, वही वो बन जाए, जैसे वो हमारी शांति है, वो हमारी धार्मिकता है, वो हमारी सहायता है, वो हमारी चंगाई है। हमें जो चाहिए परमेश्वर वही है, इसलिए ये एक सुंदर नाम है। दूसरा शब्द प्रभु, हमारे प्रभु, जिसमें एल बड़ा और ओ आर डी छोटे हैं, ये इब्रानी शब्द अदोनाय अर्थात स्वामी का अनुवाद है, इसलिए ये पदवी है और ये उसके साथ हमारे संबंध को दर्शाता है। पहला वाला उसके साथ एक होने के हमारे संबंध को दर्शाता है और दूसरा हमारे संबंधों को उसके साथ दर्शाता है। स्वामी, हे यहोवा मेरे स्वामी, कितना सुंदर है तेरा नाम। देखो यहोवा नाम सारी पृथ्वी पर सब नामों से उत्तम है। फिलिपियों अध्याय दो में हमें बताया गया है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि यहोवा शुआ, जो यहोवा का संयुक्त नाम है, और यीशु मसीह में हमारा उद्धार हो गया। जब यूसुफ मरियम के बारे में परेशान था, स्वर्गदूत ने तब उससे कहा, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ऐसा नाम जो सब नामों से ऊपर है, कितना उत्तम है तेरा नाम। यीशु का नाम पूरे संसार में उत्तम नाम, यीशु यहोवा हमारी आवश्यकता और उद्धार है। राज्य के युग में उसका एक नया नाम होगा, यहोवा सिद्केनु। मैं तो यहोवा पर ही स्थिर रहूंगा, क्योंकि सिद्केनु का उच्चारण करना कठिन है। लेकिन यरमिया हमें बताता है कि प्रभु के राज्य काल में उसका नाम यही होगा, जिसका अर्थ है हमारा उद्धार, यहोवा हमारा उद्धार है। कितना उत्तम है तेरा नाम, हर नाम से ऊपर पृथ्वी पर। भजन संहिता 8:1 में आगे लिखा है, क्या ही प्रतापमय है, तूने अपने विभाव स्वर्ग पर दिखाया है। स्वर्ग वैभवपूर्ण है, स्वर्ग परमेश्वर की महिमा करता है। वो स्वयं की महिमा नहीं, परमेश्वर की महिमा दर्शाता है। उसकी महिमा स्वर्ग से भी ऊंची है, या स्वर्गों से भी ऊपर। तो भी सबसे विभवपूर्ण चीज जो हम मनुष्य होकर देख सकते हैं वो है स्वर्ग, परंतु परमेश्वर की महिमा स्वर्ग से ऊंची है। भजन संहिता 8:2, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ का नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। ये मेरे लिए रुचि का विषय है कि महिमा के परमेश्वर ने अपने आप को ऐसे साधारण तरीकों से प्रकट किया कि एक बच्चा भी समझ जाता है। वो परमेश्वर को जानना और उस पर विश्वास करना आरंभ कर देता है। और मेरे विचार में तो सच्चा विश्वास हम इन बच्चों में देख सकते हैं। कितना सुंदर होता है इन बच्चों का विश्वास। जब हमारे बच्चे बढ़ रहे थे, तब मैं बीमार होने पर सदा यही चाहता था कि वे मेरे लिए प्रार्थना करें। कितना सच्चा विश्वास, कितना सीधापन। यीशु ने एक बच्चे को लेकर शास्त्रियों के बीच में खड़ा किया और कहा, जब तक तुम छोटे बच्चों के समान ना बनो, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। दूध पीते बच्चों के मुंह से परमेश्वर ने महिमा करवाई, उसने उन्हें शक्ति का अभिषेक प्रदान किया। दाऊद कहता है, भजन संहिता 8:3-4, जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है। दार्शनिक और अन्य लोग आज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, मनुष्य क्या है। ये दार्शनिकों की जिज्ञासा है, मनुष्य क्या है। लेकिन दार्शनिक गलती करते हैं, वे मनुष्य से आरंभ करते हैं, ना कि दाऊद के समान परमेश्वर से। हे प्रभु, मेरे प्रभु, जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूं, तो मनुष्य क्या है। यदि मैं परमेश्वर से आरंभ करूं, तब मुझे मनुष्य के बारे में स्पष्ट समझ प्राप्त होती है। परंतु यदि मैं मनुष्य से आरंभ करूं, तो मेरे पास अंतर्दृष्टि ही नहीं होगी। मैं जब तक परमेश्वर से आरंभ न करूं, तब तक मनुष्य के विषय में मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर से आरंभ करके ही मैं समझ पाऊंगा कि मनुष्य क्या है। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूं, भजन संहिता 8:4, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। जब मैं बच्चा था, तब मैं समुद्र के किनारे बैठकर सूर्य को डूबते देखा करता था। मैं एक तटवर्ती शहर में रहता था। मैं अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ लेकर वहां जाता और रेत खोदकर छोटे छोटे केकड़े पकड़ता। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं वही चट्टानों के बीच पानी में कांटा डाल देता। मैं समुद्र के जाग और डूबते हुए सूर्य को देखता। उस रेतीले तट पर मैं अकेला ही बैठा रहता था। जब अंधेरा होने लगता तो मुझे ऐसा प्रतीत होता कि मैं बहुत छोटा हूं। जब सितारे निकल आते तो मैं उन्हें देखता और कहता, मैं समुद्र के किनारे पर अकेला हूं। मैं सोचता कि यह समुद्र कितना विशाल है, तो दुनिया कितनी बड़ी होगी। मुझे तो अपने घर तक ही 3 किलोमीटर साइकिल चलना बहुत लंबा लगता था। अब जब पृथ्वी की विशालता के बारे में सोचता तो मुझे ये बोध होता कि उसकी तुलना में मैं कितना छोटा हूं। जब मैं पृथ्वी की सूर्य और अन्य सितारों से तुलना करता हूं तो मेरे मन में यही पद उभरता, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। मैं यहां इस पृथ्वी पर हूं, धूल का एक कण मात्र, तो भी परमेश्वर मुझे स्मरण रखता है। वो सदा मेरे बारे में ही सोचते रहता है। वहां रेत में बैठा हुआ मैं रेत को ही देखता रहता और मुझे अपनी मां के शब्द याद आते जो वो बाइबल से मुझे सिखाती थी। मेरे लिए तेरे विचार यदि मैं गिनूं तो वे समुद्र के बालू के कण से अधिक होंगे। मैं उसकी महानता को याद करता। मैं वहां बस बैठा रहता, परमेश्वर के कार्यों से विस्मय होता जिसने इस विशाल ब्रह्मांड को बनाया। उसको मैं देख रहा हूं और वो मुझे स्मरण रखता है। मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। परमेश्वर सदा आपको स्मरण रखता है और उसके विचार आपके लिए भलाई के हैं, बुराई के नहीं। वो ये नहीं सोचता कि भविष्य में वो आपको कैसे मुसीबत का समय देगा और वास्तव में आपके लिए कठिनाइयां खड़ी करे। देखें वो कैसे आपको स्मरण करता है। परमेश्वर सोचते रहता है, मैं उन्हें कैसे दिखाऊं कि मैं उनको कितना प्यार करता हूं। मैं कैसे दिखाऊं कि मैं उनकी निगरानी करता हूं। भविष्य में मैं उनकी क्या भलाई कर सकता हूं कि वे जाने कि मैं वहां हूं, चिंतित हूं और उन्हें प्रेम करता हूं। वो हर समय आपके बारे में सोचता रहता है। भजन संहिता 8:4 में आगे लिखा है, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधी ले, मनुष्य क्या है कि परमेश्वर उसे मिलने नीचे आए। मैं कौन हूं कि परमेश्वर मुझसे मिलने का विचार करे। तो भी उसने मुझसे मिलना चाहा। मेरे पास उसके लिए हमेशा समय नहीं रहता है। प्रभु तू देखता नहीं कि मैं कितना व्यस्त हूं। मैं बाद में मिलता हूं प्रभु। परंतु क्या आप जानते हैं, उसने एक बार भी नहीं कहा मैं बहुत व्यस्त हूं। वास्तव में वो तो बहुत खुश होता है जब मैं उसके पास आता हूं कि मानो वो मेरी संगति के लिए तरस रहा था, जबकि मुझे सब कुछ उसी से प्राप्त करना है और उससे मुझसे बहुत कम। हे प्रभु कितना अच्छा है तेरा नाम इस पृथ्वी पर। तेरे जैसे क्षमाशील परमेश्वर कौन है। कौन परमेश्वर इतना कृपालु और दयावंत, प्रेमी और सुधी लेने वाला परमेश्वर है। मनुष्य क्या है कि परमेश्वर उससे मिलने आए, और तो भी उसने किया। भजन संहिता 8:5, क्योंकि तूने उसको बनाया। मनुष्य आकस्मिक परिस्थितियों की उपज नहीं है। मनुष्य अरबों खरबों वर्षों के संयोग की उपज नहीं है। लेकिन भजन का लेखक कहता है, तूने उसको बनाया है। परंतु बुद्धिमान लोग परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे उसको अपने मन में बसाना नहीं चाहते। उनको ऐसे सिद्धांत बनाने पड़े जिससे वे मनुष्य को वैज्ञानिक शब्दावली द्वारा व्यक्त करें, और यही बुद्धिमान लोग कहते हैं कि परमेश्वर को मनुष्य ने अपने स्वरूप और अपनी पसंद के अनुसार रचा, क्योंकि मनुष्य को किसी पर विश्वास करने की आवश्यकता थी। उसने परमेश्वर के बारे में विचार और कल्पनाओं की स्थापना की, अतः परमेश्वर मनुष्य के विचारों की कल्पना मात्र है। परंतु वचन कहता है ऐसा नहीं है, तूने मनुष्यों को बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। इसलिए आपको चुनाव करना है कि मनुष्य ने परमेश्वर को बनाया या परमेश्वर ने मनुष्यों को। परंतु मेरे लिए, यदि मेरे पास अपने होने का कोई तर्क संगत आधार तो है, मैं विश्वास करूंगा कि परमेश्वर ने मेरी रचना की, अन्यथा जीवन निरार्थक है। मैं अव्यवस्था के बीच उलझन में रह रहा हूं और मेरे जीवन का कोई कारण या उद्देश्य नहीं है। मेरा पृथ्वी पर आना और यहां से चले जाना सब संयोग ही है। तूने उसको बनाया है। यदि आप अपने आप को इस सत्य से अलग कर दें, तो जीवन खोखला, कठोर और अमानवीय हो जाता है। भजन संहिता 8 पद 5 में आगे लिखा है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। स्वर्गदूत परमेश्वर की सेवक आत्मा है। उन्हें भेजा गया है कि जो लोग उद्धार के वारिस हैं, वे उनकी सेवा करें। इस ब्रह्मांड का क्रम हम देखते हैं, परमेश्वर, स्वर्गदूत, मनुष्य, पशु और पेड़ पौधे। तूने उन्हें, स्वर्गदूतों को, परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। भजन संहिता 8 पद 5 के अंत में लिखा है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। मैं इस संसार को देखता हूं जिसमें मैं रहता हूं। मैं पृथ्वी पर सब जीवधारियों को देखता हूं और पाता हूं कि मुझे आदर और महिमा से सुसज्जित किया गया है। मैं पृथ्वी पर परमेश्वर की सबसे उत्तम रचना हूं जो देखी जा सके। मैं मनुष्यों की सब उपलब्धियों को भी देखता हूं और कभी कभी सोचता हूं कि यदि इसमें मनुष्य न होता तो ये संसार कैसा होता। यदि मनुष्य पृथ्वी पर न होता तो जल प्रदूषण न होता, आकाश दूषित न होता और न परमाणु अस्त्रों से विनाश का भय होता। मैं उसकी उपलब्धियों को भी देखता हूं। यदि मनुष्य न होता तो संगीत, कविता, सुंदर चित्रकारी आदि कुछ भी ना होता। पृथ्वी में इसका अभाव रहता, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को संगीत और चित्रकारी की अभिव्यक्ति प्रदान की है। तूने महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। भजन संहिता 8 पद 6, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। परमेश्वर ने हमें उसके हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। पृथ्वी उसके कामों को दर्शाती है, इसलिए हमें पेड़ पौधों, पशुओं और पृथ्वी पर अधिकार प्रदान किया गया है। परमेश्वर ने ये सब आदम को दिया था, इन सब पर प्रभुता करो। प्रभुता का अर्थ है देखरेख करना, सुधि लेना, रक्षा करना और उसे विकसित करना। प्रभुता का अर्थ ये नहीं है कि मैं चाहूं तो इसे नाश कर दूं, मैं चाहूं तो इसे हानि पहुंचा दूं, मैं चाहूं तो प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करके उनका अंत कर दूं। ऐसा नहीं है। प्रभुता का अर्थ है इसको सवारना, इसकी रक्षा करना, इसकी सुधि लेना। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। भजन संहिता 8 पद 6 में आगे लिखा है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है, अर्थात उसे महिमा और प्रताप का ताज पहनाया। ये विचार निश्चय ही यीशु मसीह से संबंधित है और इब्रानियों की पुस्तक में यीशु मसीह के संबंध में इसे दर्शाया भी गया है। अध्याय 2 पद 6 और 8 देखें, जिसमें उसे स्वर्ग दूतों से कुछ ही कम किया ताकि वो मृत्यु सह सके। आप जानते हैं कि वो परमेश्वर का प्रधान दूत मिकाएल नहीं था। यदि वो प्रधान दूत मिकाएल होता तब तो उसे स्वर्ग दूतों से कुछ कम नहीं बनाया जाता, क्योंकि वो स्वर्ग दूत ही होता। लेकिन उसने उसे स्वर्ग दूत से कुछ ही कम किया और उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा कि वो मृत्यु को सहले। यदि वो स्वर्गदूत होता या परमेश्वर का ही रूप रखता तो वो मर नहीं सकता था, और इसलिए उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बनाया ताकि वो मृत्यु सहले। उसने उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया, परंतु इब्रानियों की पुस्तक लिखने वाला कहता है, हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को स्वर्ग दूतों से कुछ कम देखते हैं। मृत्यु को सह लेने के लिए महिमा और आदर के मुकुट के साथ परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के अधीन कर दिया है। भजन संहिता 8 पद 7 और 8, सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। एक समुद्री जहाज का कप्तान एक बार अस्पताल भर्ती था। वहां की नर्स भजन संहिता से पढ़कर उसे सुना रही थी। जब वो आठवें भजन पर आई और अंतिम पद को पढ़ा, तब उस कप्तान ने कहा, इसको कृपया फिर से पढ़िए। उसने फिर से वो पद पढ़ा। कप्तान ने कहा, एक बार और पढ़ दीजिए। उसने फिर से पढ़ा और कप्तान ने कहा, ये अत्यधिक रुचिकर है कि समुद्र में मार्ग है। यदि परमेश्वर ने घोषणा की है कि समुद्र में मार्ग होंगे, वो वहां बोतलों को सजाकर समुद्र में पानी की धारा को अंकित करने लगा और पाया कि समुद्र में निश्चय ही मार्ग है। तब से जहाजी व्यवसाय समुद्री धाराओं का अनुसरण करने लगा और इस प्रकार उन्होंने जहाज के ईंधन पर लाखों रुपयों की बचत की, क्योंकि वे पानी के वेग के अनुरूप चलते थे। समुद्री जल के ऊपर भी मार्ग है। भजन संहिता 8 पद 9, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है।